نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آیت الکرسی, سب سے پہلے تو اس کی فضیلت کیا ہے اس آیت کی؟ یہ آیت آیت الکرسی اس لیے کہلاتی ہے, اس کے اندر ایک لفظ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض, وہاں سے اس کا نام آیت الکرسی ہے. یہ بہت عظمت والی آیت ہے. حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ہی سب سے زیادہ علم ہے. پھر آپ یہی سوال بار بار پوچھتے ہیں تو پھر وہ جواب دیتے ہیں آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو المنذر, اللہ تعالیٰ تیرا علم تجھے مبارک کرے, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے اور یہ بادشاہ حقیقی تقدیس بیان کرے گی, یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گی اور عرش کے پائے کے ساتھ لگی بھی ہوگی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں, میرے ہاں ایک کھجور کی بوری تھی, میں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں. ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگہبانی کرتا رہا, میں نے دیکھا کہ ایک جانور جوان لڑکے کی طرح کا آیا ہے اور میں نے اسے سلام کیا, اس نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں. میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے. اس نے ہاتھ بڑھا دیا, میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے ہی بال بھی تھے. میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں میں سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہوں. میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقے کو پسند کرتا ہے. ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہے؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی. صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی ہے, کیونکہ وہ شیطان تھا, شیطان مردود آیا تھا چیز چرانے کے لیے. اس ان دو احادیث سے کیا پتا چلا ہمیں؟ ایک تو یہ پتا چلا کہ قیامت کے دن یہ آیت الکرسی جو ہے اس کی زبان ہوگی, اس کے ہونٹ ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گی اور عرش کے پائے کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی. اور پھر وہاں سے یعنی کیا مطلب ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے, یعنی یہ پھر اس دن کوئی سفارش کرے گی نا, اور یہ سب سے عظیم آیت ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا, دیکھیں آخرت میں تو یہ کام ہو گیا, دنیا میں کیا کام ہوا کہ اس کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے. مال کی بھی حفاظت اس آیت الکرسی کی وجہ سے ہوئی. اتنی عظیم آیت ہے کہ شیطان بھی, دیکھیں انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں, جنات میں بھی شیاطین ہیں, اور یہ شیطان انسانوں کے مال میں سے چرانے کے لیے آیا تھا. اور کیا چیز بچا سکتی ہے؟ کوئی گارڈ نہیں, کوئی اور پروٹیکٹر نہیں, آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی طرح ایک اور حدیث آتی مسند احمد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے, نکاح کیسے کروں, کیونکہ مہر نہیں نا ادا کر سکتے تھے. ان کے لیے مہر دینا سیریس بات تھی نا, ہماری طرح تو نہیں کہ میں مہر رکھا ہے کس نے دینا. تو آپ نے فرمایا قل ہو اللہ یاد نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ تو یاد ہے. فرمایا چوتھائی قرآن تو یہ ہو گیا, قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی یاد ہے. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. پھر پوچھا کہ اذا زلزلت الارض جو ہے سورہ زلزال یہ یاد ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. فرمایا کیا اذا جاء نصر اللہ یاد ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آیت الکرسی یاد ہے؟ کہا ہاں. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. تو اس کا مطلب آیت الکرسی 1/4 قرآن کے برابر ہے, تو اس کا ثواب بھی آپ کو پتا چل گیا کہ کتنا بڑا ثواب ہے اس کو پڑھنے کا. یہ نہیں ہے کہ آپ سے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں اور ہم کہیں صرف آیت الکرسی پڑھ لی चार दफा पढ़ लेंगे पूरा कुरान हो गया। नहीं, जाहिर है कुरान पढ़ने की अपनी बात है, मतलब यह है कि सवाब में इतना बड़ा सवाब मिलता है इसका। इसी तरह एक और रिवायत आती है जो पिछली से जो मिलती जुलती है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि मेरे खजाने में से जिन्नात चुरा लिया करते थे, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आपने फरमाया जब तुम उसको देखो कि कह तो कहना बिस्मिल्लाह उजीब रसूल अल्लाह। जब वो आया मैंने यही कहा कि मैं अल्लाह के नाम से और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उसने फिर उसको छोड़ दिया, उसने मिन्नत समाजत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। तो आपने फरमाया तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने कहा मैंने उसको पकड़ा था लेकिन उसने वादा किया था कि अब मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। आपने फरमाया वो फिर आएगा। मैंने इसी तरह दो तीन दफा उसको पकड़ा और ये वादा लेके छोड़ दिया। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, आपने हर दफा यही फरमाया कि वो फिर आएगा। आखिरी दफा मैंने कहा अब मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा। उसने कहा छोड़ दे, मैं तुझे एक ऐसी चीज बताऊंगी कि कोई जिन और शैतान तेरे पास आ ही नहीं सकेगा। मैंने कहा अच्छा बताओ वो क्या है? तो वो कहने लगा वो आयतल कुर्सी है। मैंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया, आपने फरमाया उसने सच कहा है, वो झूठा लेकिन ये बात उसने सच कही है। इसी तरह एक इसी किस्म की हदीस और है, बुखारी में भी है कि अबू हुरैरा जो थे वो जकात का जो माल था रमजान में जो जमा हुए थे उस पे पहरा दे रहे थे, तो जो ये शैतान आया और समेट समेट के अपनी चादर में जमा करने लगा, तो उन्होंने भी इसको पकड़ लिया लेकिन वो फिर हर रात आ जाता था। तो तीसरी मरतबा उसने बताया कि अगर तू रात को बिस्तर पे जाके इस आयत को पढ़ लेगा ना तो अल्लाह की तरफ से तुझ पर हाफिज मुकर्रर होगा, सुबह तक शैतान तेरे करीब भी नहीं आ सकेगा। ये बुखारी की रिवायत है, यानी शैतान ने ये बात बताई थी लेकिन बात सच्ची थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सूरह बकरा में एक आयत है जो कुरान की तमाम आयतों की सरदार है, जिस घर में वो पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। वो आयत आयतुल कुर्सी है। अगर आपके घर में कोई क्लैशेस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, शोहर बीवी में झगड़े हो रहे हैं या माँ बच्चों पे गुस्से हो रही है, हर टाइम हर एक का पारा चढ़ा रहता है, घर में हर वक्त एक फितने फसाद की कैफियत रहती है, तो इसका मतलब है शरीर कुव्वतें जो है ना वो जब इतनी ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं तो फिर वो नुकसान देती हैं, फिर वो घरों में झगड़े फसाद करती हैं। तो इसके लिए क्या है, जो तोहफा हमें मिला है वो है आयतुल कुर्सी का तोहफा। इसको यूज करें। ये देखें सारी जितनी आयतें हैं कुरान के अंदर सब की सरदार है। अब इससे ज्यादा अंदाजा लगाएं कि क्या बात हो सकती है। एक और हदीस में आता है, तिर्मिजी में है, कि हर चीज की कुहान होती है। कुहान पता है ना, वो जैसे कैमल के ऊपर एक कुहान होती है, बुलंदी। और कुरान पाक की जो बुलंदी है ना वो सूरह बकरा है, और उसमें भी आयतल कुर्सी सारी आयतों की सरदार है। आप देखिए बुलंदी की भी बुलंदी हो गई। इसी तरह हजरत उमर की इस सवाल पे उन्होंने ये सवाल किया था कि सारे कुरान में सबसे ज्यादा बुजुर्ग आयत कौन सी है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया मुझे खूब मालूम है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, वो आयत आयतुल कुर्सी है। फिर ये भी याद रखें एक बात कि हदीस में है कि वो इस्मे आजम, आपको पता है ना इस्मे आजम एक अल्लाह ताला का वो नाम है जिसके जरिए जो दुआ की जाए वो कबूल होती है, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं है कि वो नाम क्या है। जैसे कि लैलतुल कदर है, ये तो बता दिया उसकी क्या फजीलतें हैं लेकिन वो रात नहीं बताई गई कि कौन सी रात है एग्जैक्टली। इसी तरह इसमें आजम के जरिए जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी लेकिन इसमें आजम नहीं बताया। हाँ हदीस में ये है कि वो इसमें आजम जिस नाम की बरकत से जो दुआ अल्लाह से मांगी जाए वो कबूल होती है, वो तीन सूरतों में है, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह तौहा। तो फिर अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर रहमत फरमाए जिन लोगों ने तहकीक की कि कौन सा अल्लाह ताला का नाम है जो इन तीनों सूरतों में है। तो पता चला कि वो या हय्यु या कय्यूम है, हई और कय्यूम है। तो ज्यादा मुफसरीन ये कहते हैं कि हाई और कयूम इस आयत के अंदर जो है वो ही इसमें आजम है। इसी तरह एक और हदीस आती है इब्ने मरदवे में है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा उसे जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोकेगी सिवाय मौत की। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि आप जब फर्ज नमाज से सलाम फेरते हैं उसके बाद बगैर कलाम किए, बात किए बगैर आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है, ठीक है? तो उसके लिए जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। तो कितनी बड़ी फजीलत है इस एक आयत की। इस आयत में है क्या? इस आयत में अल्लाह ताला का तारुफ है बेसिकली। और 10 जुमले हैं, सेपरेट जुमले हैं 10, और उन 10 जुमलों में अल्लाह ताला की ये तारुफ के ऊपर बात की गई है। देखें, हम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हैं ना, वो हमारे वालदैन हों, कईयों के फौत हो जाते हैं, उनसे बड़ी उनको अकीदत मोहब्बत होती है, उनके बारे में अगर कोई उनसे पूछ ले तो इतना कुछ बताएंगे, बातें खत्म ही नहीं होंगी। इसी तरह हमारे बच्चे हैं, हमें उनसे मोहब्बत होती है, कोई पूछे ना पूछे, खैर हम खुद ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई पूछ ही ले तो हमारी तकरीर बंद नहीं होती। लेकिन क्या बात है कि अल्लाह के बारे में कोई पूछ ले, हमें समझ ही नहीं आती कि हम बताएं क्या। तो आज ये आयत सीख लेंगे ना आप, तो इंशाल्लाह यही बता दिया करें लोगों को, मेरा अल्लाह कौन है, वो है जो ये सिफात है उसमें, मेरा अल्लाह वो है जो ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, बस यही बता दिया करें। जिधर बैठे कोई एक इसमें से बात बता दे चले, जिधर बैठे आयतल कुर्सी बयान कर दिया करें, उसका तर्जुमा बयान कर दिया करें, थोड़ी सी हल्की फुल्की उसकी तफसीर बता दिया करें, लोगों को अपने रब का तारुफ तो हो जाए। क्यों हो जाते हैं हम ऐसे सुनने से बैठ जाते हैं, अल्लाह कौन है वो कोई आगे पता नहीं, एक आध जुमला कोई बोल देंगे बस, उसके बाद कुछ नहीं पता आगे, ना कोई मोहब्बत, ना कोई लगाव, ना कोई ऐसी जज्बातीयत जैसे हमें दूसरे रिश्तों में आती है। इस तरह से क्यों नहीं आती? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम खुद भी अल्लाह के बारे में नहीं जानते। अगर हम जानते होते तो उससे ज्यादा मोहब्बत हमें किसी और से ना होती, उससे ज्यादा अजमत हमारे दिल में किसी और की ना होती। तो चलिए देखते हैं, अल्लाह ताला इसका हक अदा करवा दे। मगर यकीन करें, बहुत सारी दफा मैं पढ़ाती हूँ बहुत सारी चीजें, लेकिन मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा था ये पढ़ाना, ये आज का सबक, इसलिए क्योंकि ये तारीफ उस रब की है जो इस जुबान से बयान नहीं हो सकती। अल्लाह ही करवा दे, कोई हमारी कोशिशों को कबूल कर ले, लेकिन ये वो तारुफ है, अल्फाज तो हैं, अल्फाज को भी नहीं हम सही से बयान कर सकते, उसकी सिफात तक, उसकी जात तक, उसकी तारीफ तक पहुंचना अल्लाह हमारे तो बस में नहीं है। तो देखते हैं, अल्लाह हो, अल्लाह ताला, अल्लाह कौन है? अब देखें, हर जुमले के साथ आपने ये लगाना है, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहुल हय्युल कय्यूम, अल्लाहु ला ताखुज़ुहु सिनतुन, यानी अल्लाह वो है जिसका कोई किसी का कोई इलाह नहीं, अल्लाह वो है जो हमेशा जिंदा है और जो कायम रखने वाला है, अल्लाह वो है जो ना ऊंग आती है जिसको और ना नींद आती है, अल्लाह वो है जिसके लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है वो उसी का है, अल्लाह वो है कि जिसके सामने किसकी मिजाल हो सकती है कि वो शिफात करे सिवाय उसके इज़्ज़त के, अल्लाह वो है जो जानता है जो सामने और जो पीछे। समझ आई ना बात? तो ये अल्लाह लफ्ज जो है ना, जिसको हम अगर थोड़ी बहुत भी आपको इंग्लिश की या कुछ बच्चों को अगर आप पढ़ाती हैं, आपको ये थोड़ा सा पता होगा, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं ना, कि एक सब्जेक्ट होता है और आगे फिर उसकी यानी मुबतदा और खबर होती है, तो अल्लाह मुबतदा है और ये सारी खबर है, ये पूरी जो आयत है। तो अल्लाह सबसे पहले, सबसे पहली उसकी सिफत क्या है? अल्लाह, अल्लाह कौन है? ला इलाहा इल्ला हुआ, उस जैसा कोई है ही नहीं, कोई इलाह है ही नहीं नफी की, पहले ला इलाह, पहले सिर्फ इतनी बात को देखें, ला इलाह कोई इलाह है ही नहीं है, यानी जितने भी लोग बुत शैतान कुछ भी जिसकी भी कोई पूजा कर रहा है उनमें से कोई भी इलाह नहीं है, उनके अलावा भी कोई किसी को समझता है, कोई इलाह है ही नहीं। ला नफी जिन्स है, यानी अलूहियत की जिन्स को ही खत्म कर दिया, कोई भी नहीं इलाह, पहले नो कर दी, ला की तलवार सब पे चला दी, नो 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 कोई इलाह नहीं। फिर एक एक्सेप्शन है, इल्ला हुआ सिवाय उसके, सिवाय वो एक है जो इलाह है, वो जो सच्चा इलाह बस वही है। अब ये भी कहा जा सकता था, देखें एक ये जो एक दो लफ्जों में ये कहा जा सकता है, अल्लाहु इलाहुन, अल्लाह इलाह है, हो सकता था ना ये भी बात, और सिर्फ ये क्या नहीं होती, इलाह कौन है, अल्लाह इलाह है भाई। लेकिन देखो अंदाज, पहले क्या कहा गया, ला इलाह, पहले सारे जितने भी इलाह हैं उनकी नफी की गई, पहले ये जरूरी है कि आप ये माने कि कोई और इलाह नहीं है, फिर उसके बाद ये माने कि सिर्फ अल्लाह इलाह है। अगर आप सिर्फ ये कह देते ना अल्लाहु इलाहु अल्लाह इलाह है, तो ये भी हो सकता है कि अल्लाह तो इलाह है, नाउज़ुबिल्ला कोई और फलां भी इलाह है, हाँ अल्लाह तो इलाह है ही, जैसे ये लोग कहते हैं नहीं हमारा फलां बुक भी इलाह है, वहां फलां पैगंबर भी इलाह है, नाउज़ुबिल्ला ना? तो अल्लाह तो है मगर नाउज बिल्ला वो फादर सन और वो फिर आगे वो होली गोस्ट, ये यहां तक भी कह देते हैं, वो उसको तो मानते हैं कि वो तो इलाह है मगर उसके साथ और भी है। लेकिन जब ये कह दिया जाता है ना ला इलाहा इल्लाह, तो ला की तलवार चल गई सब पे, सबको खत्म कर दिया, कोई है ही नहीं इलाह मगर सिर्फ वो ही है। अब अल्लाह जो लफ्ज है ना, ये भी बाज कहते हैं अल इलाह था, अल इलाह, उस अल इलाह को बीच वाला अलिफ निकाल दिया तो अल्लाह बन गया। अब इसकी हम डिटेल में, अभी इतना वक्त नहीं होता वरना इसकी डिटेल में जाते हम, लेकिन किसी और वक्त इंशाल्लाह ताला इस एक लफ्ज अल्लाह के ऊपर हम बात करेंगे। तो सिर्फ अभी इतनी बात समझ लें कि इतना अजीम ये लफ्ज है, और ये कहा जाता है ये अल्लाह ताला का इसमें जात है, एक होता है ना सिफाती नाम और एक होता है जाती नाम, तो ये अल्लाह ताला का जाती नाम है। इतना अजीम ये एक लफ्ज है, आप देखें इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, एक एक इस लफ्ज के ऊपर आप ने इतना तो अब आप जान गए कि जो भी अलिफ लाम से शुरू होने वाले मुनादा हैं उनके लिए या अय्युहा लगता है, या अय्युहा ना, जैसे या अय्युहल्लदीना आमन, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, अलिफ लाम से शुरू हो रहे हैं, अलिफ लाम से वो शुरू हो रहा है अर रसूल अन नबी, यहाँ पे अलिफ लाम से ये शुरू हो रहा है, लेकिन या अल्लाह कहा जाता है, या अय्युहल्लाह नहीं कहा जाता। फिर देखे हर हर्फ इसका ऐसा है कि अगर उसको हटा दिया जाए तो मतलब नहीं बदलता। वैसे आप किसी वर्ड में से कोई एक हर्फ, कोई एक लेटर हटा दें, जमील में से आप जीम हटा दें तो क्या बन जाएगा, मैल बन जाएगा, उलट ही हो गया मतलब। लेकिन अल्लाह लफ्ज अल्लाह में से कोई हर्फ हटा दो, अलिफ हटा दो, लिल्लाह बन गया, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, अलिफ लाम हटा दो, लहू लहू मा फिस समावाति वल अर्द। अच्छा फिर अलिफ भी और लाम भी सारे हटा दो, हा सिर्फ रहने दो, तो हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, फिर भी वही बनता है, वही अल्लाह। तो अल्लाह वो नाम ही जिसका इतना अजीम है, वो कौन है, वो है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। अब इलाह कौन होता है, वो जिसकी इबादत की जाए ना, उसको क्या कहते हैं इलाह, जिसकी पूजा की जाए। तो इबादत में मैंने आपको इय्याका नाबुदु की तफसीर में बताया था कि इबादत में दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो चीजें जरूरी होती हैं, इताअत और मोहब्बत। इन दो चीजों के साथ मिलके इबादत बनती है। अब बाज लोग अल्लाह की इबादत तो करते हैं, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, उसकी इताअत नहीं करते। बाज अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन उसकी उससे मोहब्बत नहीं करते। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी को ला इलाहा इल्ला हुआ कहा गया, क्योंकि अल्लाह एंड में नहीं आया, बल्कि पहले अल्लाह कौन है जो ला इलाहा इल्ला हुआ, ये कलिमा ही है। ये वो पैगाम है जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए थे कुफार, इसलिए कि वो इताअत नहीं करना चाहते थे। इताअत, सजदा करने में उनको कोई मसला नहीं था, बुतों को सजदा कर लेते थे, इधर भी सजदा कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मसला कहाँ आता है? इताअत, ओबीडियंस, ओबे नहीं कर सकते, मसला यहां आता है। लेकिन वो जात है इस काबिल कि उसकी इबादत की जाए, यानी वो जात इस काबिल है कि उसकी इताअत की जाए, और वो जात इस काबिल है कि उससे मोहब्बत की जाए। तो जब हम ला इलाहा इल्ला हुआ कह रहे हैं तो नहीं कोई इताअत के लायक मगर वो, नहीं कोई मोहब्बत के लायक मगर वो। इसको अगर आप खोल के अगर बयान करें तो ये मतलब बन जाएगा ना कि उससे अलावा कोई नहीं है जिसकी ऐसे इबादत की जाए, उसके अलावा कोई नहीं है जिससे ऐसे मोहब्बत की जाए। अब आप देखें 20वां पारा जब शुरू हो रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मन खलकस समावाति वल अर्द वअंजल लकुम मिनस समाई माअन फअंबतना बिही हदाइक ज़ात बहजा मा काना लकुम अन तुम्बितु शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। भला बताओ तो जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, किसने आसमान से बारिश बरसाई, फिर किसने हरे भरे बारौनक बागात उगा दिए, इन बागों के दरख्तों को तुम हरगिज नहीं उगा सकते थे। इलाहुम्मा अल्लाह, फिर क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? बल हम कौमु यादनून, ये लोग तो हटे हुए सीधे रास्ते से। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया क्या ये जिस जमीन को अल्लाह, जिस जमीन के ऊपर ये रहते हैं, जिस जमीन को करारगाह बनाया जिसने, और इसके दरमियान नहरें जारी कर दी, और इसके लिए पहाड़ बना दिए, और दो समंदरों के दरमियान रोक बना दी, इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद है जो ये सब करके दे सकता है? लेकिन अक्सर इनमें से, बल अक्सरहुम ला यालमून, अक्सर इनमें से कुछ जानते ही नहीं। अम्मा युजीबुल मुस्तरा इज़ा दाअहू व यक्शिफुस सूअ, कौन है जो बेकस की पुकार को सुने और कबूल करता है उसको, और सख्ती को दूर कर देता है, और तुम्हें जमीन का खलीफा बनाता है? आ इलाहु मा अल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई और, उसके साथ कोई और इलाह है जो ये करके दिखाए? लेकिन खलील मा तज़क्करून, कितना कम तुम इबरत हासिल करते हो, इतना कम तुम नसीहत पकड़ते हो। फिर फरमाया क्या वो जो तुम्हें खुशकी और तरी की तारीकियों में रास्ता दिखाता है, जो अपनी रहमत से पहले ही खुशखबरियां देने वाली हवाएं चलाता है, आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह है जो ये करके दिखाए? ताला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, अल्लाह उससे बहुत बुलंद है जो ये शिर्क करते हैं। क्या वो जो मखलूक की अव्वल दफा पैदाइश करता है फिर उसको लौटाएगा, और जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजियां दे रहा है, आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? कुल हातु बुरहानकुम, कह दीजिए आप लेकर आओ कोई दलील कि अल्लाह के साथ कोई और अगर माबूद है तो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो कोई दलील लाके दिखाओ। तो इंसान यहां पे आजिज हो जाता है, अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं बार बार, आ इलाहुम्मा अल्लाह, आ इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है, कोई इसका शरीक है? नहीं, कोई शरीक नहीं, वो अकेला ही इलाह है। तो फिर वो जो अकेला इलाह है वो ही आपके सजदों के लायक हस्ती है कि आप उसी के आगे सजदा करें, उसी के आगे दुआओं के लिए हाथ उठाएं, उसी से मांगें, उसी से डरें, उसी से मोहब्बत करें, क्योंकि वो अकेला ही है जिसने सब कुछ किया है, कोई और उसके साथ शरीक नहीं है। लेकिन देख लें हमारी आंखें रोब से भर जाती हैं हम जब किसी और की कोई भी चीज देखते हैं, इतना हम रोब खाते हैं। लेकिन अल्लाह की जो हम वो जो खालिक है, अल्लाह खालिक कुल्ली शयइन व हुवा अला कुल्ली शयइन वकील, अल्लाह खालिक है जो हर चीज का, जो मालिक है खालिक है, उसको उसकी कायनात को देख के हमें बिल्कुल भी नहीं कोई वो इस तरह से होता कि हम कोई इम्प्रेस हो जाए। वो है जो अर्श अजीम का मालिक है, वो है जो आसमानों का मालिक है, रब्बे जिब्राइल और मिकाइल है, हवाओं का मालिक है, आसमान की छत का मालिक है, सूरज का मालिक है, चांद का मालिक है, सितारों सियारों का मालिक है। मा यालम जुनूद रब्बी का इला हुआ, अल्लाह के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, इतना कुछ का मालिक वो अकेला है, उसका कोई वजीर नहीं है, उसका कोई सेक्रेटरी नहीं है, उसका कोई मशवरे देने वाला नहीं है, उसके कोई पहरेदार नहीं है, कोई फौज नहीं है, कोई बॉडीगार्ड्स नहीं है, उनसे पाक है, जमान और मकान से पाक है, किसी मकान में नहीं आता, किसी जगह में नहीं समाता, ना किसी जमाने में समाता है, माजी हाल मुस्तकबिल से बेनियाज है, दोजख से जन्नत से लौह से कुर्सी से अर्श से इन सब से बेनियाज है, उसको इनकी जरूरत नहीं है। वो खुद फरमाते ना कुल हु अल्लाह अहद, मेरे बंदों को बता दें ए नबी कि वो अल्लाह अहद है, अहद अहद का मतलब एक नहीं है, अहद का मतलब यूनिक अकेला जिसका दूसरा कोई नहीं बन सकता। अगर एक कहा जाता ना तो फिर साथ ये हो सकता था कि एक वो है और एक और भी है तो दो हो जाते, लेकिन जब कह दिया गया अकेला तो अकेले का दूसरा कोई नहीं, वो तन्हा और यकता है, यूनिक ऐसा कोई है ही नहीं, ना उसका कोई रिश्ता है ना कोई नाता है, वो रिश्तों से पाक है, वो गनी है। मा यमलिकूना मिन कितमीर, जो दूसरे हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं वो तो एक कितमीर के भी मालिक नहीं है। कितमीर क्या होता है? खजूर आप आज खाइएगा और उसमें देखिएगा गुठली के ऊपर एक छिलका सा होता है, सफेद सा छिलका होता है गुठली के ऊपर। गुठलियां ही अरब के अंदर तो खजूरें ही इतनी होती थी, वहां पे तो गुठलियां तो बिल्कुल ही किसी काम की नहीं, बिल्कुल मुफ्त ही होती थी। उस गुठली के ऊपर भी जो एक छिलका है तो उसका भी कोई मालिक नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो ये सारा निजाम जिसने चलाया था, जो सब चीजों का मालिक है, वो ही एक इलाह है, उसके साथ कोई नहीं है। तो हम जो अपने आप को दुनिया में समझते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज या कोई चीजों के मालिक या कुछ है, वो भी मिल्कियत अल्लाह ताला ने टेम्परेरीली दी थी। किसी चीज का भी इंसान मालिक नहीं है, परमानेंट अल्लाह ही की दी हुई। इलाह अकेला वही है। और हर चीज आप देख लें जो कायनात में निशानियां फैली हैं, वो जुबाने हाल से बयान कर रही हैं कि इस कायनात का मालिक सिर्फ अकेला एक ही है, वो ही है। अगर यहाँ पे दो खुदा होते तो ये कायनात कभी भी कायम ना रह सकती। और अल्लाह कौन है? अल्लाहुल, अब मैं आपको साथ इसलिए बता रही हूं ताकि आपको पता चले कि ये इस अल्लाह ताला का ही दूसरा तारुफ क्या है, अल्लाहुल हय्युल कय्यूम, वो जो हमेशा से जिंदा है और जो कायम रखने वाला है। इंसान उसी पे भरोसा कर सकता है ना जो जिंदा हो। अगर नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला जो खुदा है उसी को मौत आ जाए तो फिर इंसान किधर जाएगा? तो वो हमारा जो रब है, जो इलाह है, वो मौत से पाक है। ऐसी कोई और जात नहीं है इस कायनात में जो मौत से पाक हो। जिनको भी लोग पूछते हैं या तो वो मर चुके हैं या मरने वाले हैं, मौत आई ना उनके ऊपर, ये अलग बात है। वो कहते नहीं, मरने के बाद भी वो जिंदा है। ओ भाई कौन सा जिंदा है तुम्हें, कौन सा इसका कोई प्रूफ लाके दिखाओ ना फिर। फलां मर के भी कब्र में जिंदा है, कोई कहीं जिंदा है, कोई कहीं जिंदा है, क्या प्रूफ है? तो उसकी कैसे इबादत हो सकती है जो जिंदा ही ना हो? शिर्क यहीं से तो शुरू हो जाता है। ये सिर्फ एक क्वालिटी सिर्फ अल्लाह ताला में, कि वो हाई है, हमेशा जिंदा है। ना हम इसको फरिश्तों में समझ सकते हैं, ना हम इसको किसी पैगंबर में मान सकते हैं कि कोई पैगंबर है, नहीं जी वो जिंदा है। नहीं, ये क्वालिटी सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसके सिवा किसी में नहीं। कि वो उसकी इब्तदा कोई नहीं है कि वहां से अल्लाह का स्टार्ट हुआ, नो, इब्तदा से पाक है। अब ये हम कहां से समझे, अच्छा करोड़ों बिलियन ट्रिलियन, हमारी अकल कहती है बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स, चलो जितना भी पीछे चले जाए, फिर कब कब शुरुआत हुई, फिर कब से अल्लाह है। ओ मेरी और आपकी अकल में ये हई की सिफत आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमारी अकल कहती कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा, नहीं वो हमेशा से है और हमेशा तक है। हम कोई ईयर्स, हम कोई टाइम डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो टाइम की जो टाइम का जो एक स्पैन या एक जो एक लिमिट होती है वो उससे बियॉन्ड है, उसके ऊपर टाइम नहीं है। मैंने आपको बताया ना अभी जमान और मकान से पाक है, जमाना उसके ऊपर नहीं है, यानी कोई टाइम की बाउंड्री नहीं है, वो अल्लाह ताला जहां है ना वहां पर टाइम है ही नहीं। अब ये कि हमारे पास दुनिया में टाइम है ना, ये टाइम का क्या होता है नुकसान कि टाइम जैसे जैसे गुजरता है जो चीज भी है वो पुरानी हो रही। एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, जब टाइम गुजरेगा कैसे क्या हो रहा है उसके ऊपर, वक्त आ रहा है, उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, उसके वो पुराना हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज, चाहे वो जानदार है गैर जानदार है, लिविंग नॉन लिविंग, हर चीज टाइम उसको पुराना करती है, टाइम उसको उसकी मौत की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह की जात ऐसी है, वो टाइम से पाक है, ठीक है। तो वो हाई 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 है, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने कहा था ना, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। तो दिल में तो आता है तो समझ में नहीं आता, अगर अकल से सोचते हैं ना आप तो आपकी अकल जा ही नहीं सकती यहां तक, बस जान गया मैं, मुझे पता चल गया तेरी पहचान यही है। सुभान अल्लाह, कि वो हई जात है और कयूम जात है। और ये भी कितना प्यारी एक बात है, कयूम एक अल्लाह ताला की सिफत है, जो कायम रखने वाला। ये जो जितनी भी मखलूक है वो कायम क्यों है, उसके रखने से कायम है, ठीक है। हर चीज उसके हुक्म से कायम है, लेकिन जितनी गैलेक्सीज हैं, जितने सिस्टम्स हैं, जितने इंसान हैं, हैवान हैं, चरिंदे परिंदे, ये कायम नहीं रह सकते थे अगर अल्लाह की ये सिफत ना होती। चाहे वो उनको कायम रखे हुए, और कायम रखने के लिए किसी चीज को वॉच करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, उसकी निगहदाश्त करनी पड़ती है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, उसको उसकी देखभाल करनी पड़ती है, कोई चीज भी कायम रखने के लिए ना। तो हर चीज का कायम होना, कायम रहना, अगर हम इस वक्त जिंदा है तो हम किस तरह से जिंदा है कि उसने हमें कायम रखा हुआ है। ये जमीन चल रही है तो इसलिए कि अल्लाह ने इसको कायम रखा हुआ है, तो ये उसकी इस सिफत की वजह से है कि उसके पास सिफत कयूम है। जितनी मखलूकात हैं वो इस उसकी सिर्फ इस एक सिफत की वजह से कायम दायम है। समझ आई बात, सिर्फ इस एक सिफत की वजह से, और उसमें जितनी उनकी नीड्स हैं वो सब पूरी हो रही हैं सब, क्योंकि उनके कायम रहने के लिए जाहिर है उनको खाना भी चाहिए, उनको पीना भी चाहिए, या उनको जो कुछ भी चाहिए अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो उनकी एग्जिस्टेंस इस वजह से है कि अल्लाह ताला कयूम है, कायम रखने वाला है। समझ आ गई बात। देखें ये जो दो क्वालिटीज है ना, ये कोई और पोजेस नहीं कर सकता। हम अपनी जिंदगी का हाल देख लें, आप जिंदा तो हम भी हैं, तो ये कह सकते हैं हम हाई हैं, नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि हमारी हयात का तो ये हाल है, ये दो चार दिन हम खाना ना खाए तो मर जाएंगे ना। हमारी हयात का ये हाल है कि नींद अगर हम ना सो सके ना, तो वो नहीं जो मुजरिमों को देते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं ये के लिए उनको ना जगाया जाता है, जगाया जाता है, जाग जाग के उनका हाल बुरा हो जाता है, वो सारा कुछ बता देते हैं जो भी उनके राज होते हैं। क्योंकि नींद जो है ना, इंसान नींद के बगैर भी नहीं रह सकता, इंसान मर जाता है, साइंस बताती है इंसान मर जाता है अगर वो सोए ना, तो नींद भी उसके लिए जरूरी है। फिर देख ले बीमारी आ जाए, सख्त बीमारी आ जाता तब मर जाता है, इंसान की तो ये हालत है ना, गर्मी ज्यादा हो जाए तब मर जाएंगे, सर्दी ज्यादा हो जाए तब मर जाएंगे, पानी ना मिले तब मर जाएंगे, हवा ना मिले तब मर जाएंगे। तो ये तो हमारी तो जिंदगी का ये हाल है। तो अल्लाह ताला इन सब चीजों से पाक है, उसकी हयात ऐसी नहीं कि किसी चीज पर डिपेंडेंट है, और उसकी हयात ऐसी नहीं जो किसी ने उसको दी है। हमें तो जिंदगी अल्लाह ने दी है ना, हम खुद से तो नहीं जिंदा। जिस दिन वो चाहेगा हमारे से जिंदगी वापस ले लेगा, ना हमारा दुनिया में आने में कोई दखल, ना जाने में कोई दखल, ऐसा ही है ना। लेकिन उसका साथ ऐसा नहीं, किसी ने उसको दी नहीं हुई, उसकी अपनी है ये, उसकी हर सिफत उसकी अपनी है, वो पोजेस खुद करता है, कोई किसी से सिफत ली नहीं हुई। हमारी हर सिफत हमारी से हमने ली भी है, हमारी अपनी नहीं। फिर हमारा तो वजूद लिमिटेड है ना, वो लामहदूद है। अल्लाहु अकबर। तो और कयूम वाली जो सिफत है ना, इसको भी आप जरूर समझे, क्योंकि तभी इंसान अल्लाह ताला की जो ये सिफात है उनको अप्रिशिएट कर सकता है, जब आप इनके डेप्थ में जाते हैं। अर्श कब से है पता नहीं, कब बना, पानी कब बना वो ये भी नहीं हमें पता, इससे भी पहले अल्लाह अपनी जात में मौजूद है, उसके कोई ये नहीं है कि वो पैदा हुआ है। अर्श, पानी, आसमान, जमीन, ये कभी पैदा हुए हैं ना कभी तो ये पैदा हुए, लेकिन अल्लाह कभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज पैदा होती है उसको मौत आती है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला की ये सिफात इतनी खूबसूरत सिफात है, इनका कई लोग इनका विरद भी करते हैं, अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारते हैं, जैसे एक दुआ है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ए हय्यू और या ए कय्यूम मैं तेरी रहमत की दुहाई देती हूँ, हम तेरी रहमत, नस्तगीस है ना, हम तेरी रहमत की दुहाई देते हैं। तो इतनी यानी ये एक ऐसी सिफत है अल्लाह ताला की, ऐसी सिफात है जो कि अगर आप दुआ मांगे ना तो इन सिफात के साथ दुआ मांगे, ताकि हो सकता है अगर ये इसमें आजम अगर ये ही है तो आपकी दुआ कबूल होगी। हजरत अली फरमाते हैं कि गजवा बदर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफे सीधी की और हमें जंग की तरफ जंग के लिए लगा दिया, तो आप सजदे में गिर गए और सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में या हय्यू या कय्यूम पढ़ना शुरू कर दिया। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं मैदान जंग का एक चक्कर लगा के खूब लड़ लड़ा के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया, देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी सज्दे में थे और या हय्यू या कय्यूम ऊंची आवाज में अल्लाह के हजूर पढ़ रहे थे। तो हजरत अली फरमाते हैं कि इससे पहले इस्लाम में इससे ज्यादा सख्त घड़ी कभी नहीं आई थी, और इससे ज्यादा गिड़गड़ा के दुआ भी शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ना की हो। मालूम होता है कि या हय्यू या कय्यूम ही इसमें आजम है जो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिफात से अल्लाह ताला को पुकारा था। इसी तरह अभी ये तो मतलब रिसेंटली की भी बात है कि सीरिया के एक मुहद्दिस थे, तो उनको सजाए मौत हो गई, तो वो जेल से भाग गए और इजिप्ट पहुंच गए, वहां से उन्होंने फिर सऊदी हुकूमत की पनाह ली और सऊदी अरब आ गए। तो कोई एक आलिम दीन थे, तो वो बताते हैं कि वो मेरे साथ हदीस पढ़ा रहे थे, तो एक दफा मैं और वो इकट्ठे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उनका सांस फूल गया, तो पता चला कि इनको एजमा की तकलीफ है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जेल तोड़ के भागे हैं और आपसे ये सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, फिर आप जेल तोड़ के कैसे फरार हो गए। कहने लगे मैंने जेल कहाँ तोड़ी है, मैं तो बस तीन दुआएं सजदे में कसरत से पढ़ा करता था और जेल के दरवाजे जैसे खुद ब खुद खुल गए, एक या हय्यू या कय्यूम, और ये मैं रो रो के ये दुआ मांगता था, ए अल्लाह मुझे कुछ और उम्र दे दे कि मैं दीन का काम करूं, और दूसरे ये कि मैं आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन इसको बहुत ज्यादा पढ़ा करता था, और तीसरी दुआ सूरह नमल की जो आयत है 62, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, मैंने आपको पहले भी बताई वो पढ़ता था। कहते हैं कि जेल हुकाम ने खुद मुझे सिखाया कि भागो, हमने तुम्हें रास्ता दे दिया। तो ये देखें कि कई लोगों के जो तजर्बात होते हैं वो भी हमें बताते हैं ना कि किस तरह से अल्लाह ताला मदद फरमाता है। तो लेकिन ये बात है, एक बात और जहन में रखें, कोई भी ये ना कहे कि हदीस में ये है, इतनी दफा पढ़ो, इस तरह पढ़ो, उस तरह पढ़ो, नहीं। देखिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से कुछ नहीं फरमाया, तो हम खुद से ना बना लें कि मखसूस अंदाज में इतनी दफा ये पढ़ेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये किसी हदीस में है ही नहीं। तो हम खुद नहीं बना सकते। हाँ हम ये कह सकते हैं कि मैंने इस तरह से पढ़ा, जैसे मैंने आपको ये अभी बात बताई कि उन्होंने सज्दे में इस तरह से पढ़ा, ये कोई हदीस वगैरह नहीं वो बता रहे, वो अपना तजर्बा बता सकते हैं आप लोगों को तो, मगर इसको हदीस ना कहें, इसको सुन्नत ना कहें, इसको ऐसे ना कहें। वैसे इसकी इतनी ज्यादा सिफात, जो इस नाम को पढ़ना, इस नाम का विर्द करना, इस नाम को बार बार इस नाम के जरिए अल्लाह ताला को पुकारना, ये तो सही है, मगर कोई ऐसे करके कहे कि इतनी दफा इतनी नमाज के बाद ये हदीस है, ये कुछ सही बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अल्लाहु ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह वो है जिसको ना ऊंग पकड़ती है और ना नींद, नींद और ऊंग से पाक है। नींद और ऊंग क्या चीजें हैं? ये नींद तो जिसको हम कहते हैं ना, नींद मौत की बहन है ये कहा जाता है, इसीलिए हम उठ के जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमें जिंदगी दी मौत के बाद। हम मरे से तो नहीं उठे थे ना, हम किससे उठे? नींद से उठे। लेकिन अल्लाह वो है जिस जो नींद से पाक है, ऊंग से पाक है। नींद तो क्या आनी है, उसको ऊंग भी नहीं आती। और ऊंग क्या होता है? जिसमें इंसान के आसाब थोड़े ढीले पड़ जाते हैं ना, आप देखते हैं कि आप अपने आप को इधर को ऐसे करके गिरते हैं, फिर इधर को ऐसे, क्योंकि नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं, लेकिन अभी आपका दिमाग जाग रहा होता है ना, तो ये एक सिना की कैफियत है। नींद में तो इंसान बिल्कुल ही बेखबर हो जाता है, तो उसको तो नींद का जो फर्स्ट स्टेज है, जो सिना है, वो तक नहीं उसको कभी आती। इसलिए कि अगर अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अगर वो खुदा ही सो जाए तो फिर खलकत का क्या बनेगा, मखलूक का क्या बनेगा। अच्छा, इससे आपको पता चलता है कि हम अल्लाह को कभी भी पुकारें, रात हो दिन हो, किसी और को आप पुकारोगे ना, माँ को भी पुकारोगे, एक दफा दो दफा तीन दफा माँ भी तंग आ जाएगी, थक जाएगी, कहेगी अब मैंने सोना है खुदा के लिए, मैं तो रात पहले नहीं सोई थी, अब फिर तुम मुझे तंग कर रहे, है ना। माँ का रिश्ता सबसे ज्यादा मोहब्बत वाला ना, वो भी ये कह देती है अब बस करो खुदा के लिए, अब तो मुझे सोने दो। लेकिन अल्लाह की जात वो है, आप रात सारी पुकारते रहो, दिन पुकारते रहो, अगली रात भी पुकारते रहो, अगला दिन भी, उसने तो कभी सोना ही नहीं, उसका दर हर वक्त खुला हुआ है, वो कभी गाफिल है ही नहीं, क्योंकि नींद में इंसान गाफिल हो जाता ना, वो कभी गाफिल नहीं होता, हर वक्त सुन रहा है वो अल्लाह अकबर। और लोगों को देखो कि वो उस अल्लाह को छोड़ के उनके पास जा जाके अपनी फरियादें रखते हैं, जो सो भी जाते हैं, वो उनको तो गफलत में पता भी नहीं है, उनके दरवाजों पे जाके खड़े होते हैं, वो उसको पुकारो जिसको कभी ना नींद है ना ऊंग है। ये तो मखलूक की खसूसियात है ना, क्योंकि मखलूक थक जाती है तो वो थकन से तो पाक है, वो थकता ही नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा को चार बातें बताई कि ना नींद और ना ऊंग उसके लायक है, अल्लाह ताला के लायक नहीं है कि वो कभी सोए या ऊंगे, वो तराजू का हाफिज है जिसके लिए चाहे झुका दे और जिसके लिए चाहे ना झुका दे, और दिन के अमाल रात से पहले, रात के अमाल दिन से पहले उसके पास ले जाए जाते हैं। और चौथी बात जो बताई वो बहुत हमारी तो खैर अकल में आ ही नहीं सकती, और फरमाया उसके सामने नूर और आग के पर्दे हैं, अगर वो हट जाएं तो उसके नूर की तजल्लियां उन तमाम चीजों को जला दें जिनके जिन तक उसकी निगाह पहुंचे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बारे में बताया, यानी उसके आगे नूर के पर्दे, हम क्या जाने के किस तरह वो कि क्या इसकी कैफियत है, हम नहीं जान सकते, बस जो बताया उसी तरह हम इस बात को समझ लें। तो अल्लाह ताला हर नींद और ऊंग से पाक है। एक रिवायत आती है, इसराइली रिवायत है, लेकिन मैं इसी जस्ट हमें हमारे समझने के लिए मैं आपके सामने रखती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से पूछा क्या अल्लाह ताला सोता भी है, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तरफ वही की कि मूसा अलैहिस्सलाम को तीन रातों तक जगाए रखें, उन्होंने यही किया, तीन रातों तक सोने नहीं दिया, उसके बाद दो बोतलें उनके हाथ में दे दी और कह दिया कि इनको पकड़े रखें, ये गिरने ना पाएं, टूटने ना पाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ लिया, लेकिन जाहिर है जागे हुए थे इतनी रातों के, नींद का गलबा आया, ऊंग आने लगी, आंखें बंद हो जाती थी, लेकिन फिर होशियार हो जाते, मगर कब तक, आखिर एक दफा ऐसा झोंका आया कि बोतलें गिर गईं और टूट गईं। तो उनको बताया गया कि जब एक ऊंगने और सोने वाला दो बोतलों को नहीं संभाल सकता, तो अल्लाह ताला अगर ऊंगे या सोए तो जमीन और आसमान की हिफाजत किस तरह हो सकेगी। अगर वो ऊंगने लग गया तो बताएं ये निजाम जो कायनात टकरा ना जाए एक दूसरे से, यहां पे कयामत ना आ जाए। तो वो इससे पाक है, बेखबरी से पाक है, गफलत से पाक है। मखलूक का कोई जर्रा भी उसकी हिफाजत और उसके इल्म से बाहर नहीं। अगर वो सो गया तो उसको इल्म कैसे होगा कि कौन क्या कर रहा। उसके तो इल्म में हर हर बात है, उसकी हिफाजत में हर हर बात है, वो कायम कैसे रख सकेगा हर चीज को। ठीक है, हर चीज इंटर रिलेटेड है ना। हई और कयूम, वो कयूम है, वो इसी वजह से कायम रख सकता है क्योंकि वो सोता नहीं है, नींद नहीं है, उससे पाक है, तभी तो सारी चीजें चल रही हैं हार्मनी के साथ सही तरीके से। अगर वो सो ही जाए तो फिर कैसे चलेंगी। सितारे सैयारे टकरा ना जाए, सूरज आके जमीन पे गिर जाए, जमीन कहीं और चली जाए अपने ऑर्बिट से निकल के। लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्थ। अच्छा हाँ, एक और बात, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम में एक और बात है, ये जो ला दोबारा आया ना, ये भी हो सकता था, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वनौम, नहीं पकड़ती उसको ऊंग और नींद। ला एक दफा आ गया, दोनों के लिए आ गया, मगर अगर एक दफा ला आता ना तो इसका मतलब पता है क्या होना था। अब इतनी डेप्थ में हम वो नहीं होते, लेकिन मैं सिर्फ आपको ताकि आप अप्रिशिएट कर सकें इसकी ब्यूटी को। अगर एक दफा ला आता ना तो फिर ये माना हो सकता था कि इकट्ठे दोनों नहीं आती, सिना और नऊम। हाँ, कभी सिना और कभी नऊम आ सकती है अकेले अकेले, लेकिन जब ला दोबारा आ गया तो इसका मतलब क्या है, सिना भी नहीं कभी आ सकती और नऊम भी कभी नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह। लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, उसी के लिए है जो आसमानों में है, ये नहीं कि आसमान उसके लिए, उसी के लिए जो आसमानों में है और जो जमीन में, वॉट एवर एंड हु एवर इज, जिंदा हैं चीजें, मुर्दा हैं चीजें, कोई चीज भी है, उसी के लिए। उसी के लिए का मतलब क्या है, यानी उसकी मिल्कियत में है, वो ओनर है उनका, उसके कब्जे में है, उसकी है, एवरीथिंग इज हिज। अब देख लें कि एक एक चीज को इसकी, आप इसकी डेप्थ में जाएं, एक एक चीज को अप्रिशिएट आप करेंगे कि हर चीज वो मालिक है, हर चीज का। इंसान इस जमीन पे जो बड़ा बन के फिरता है कि मैं इस चीज का मालिक, मैं उस चीज का मालिक, ये मेरा वो मेरा, हालांकि कुछ उसका नहीं है, असल मालिक अल्लाह है। ये बात जिंदगी में समझ नहीं आती, ये बात मौत के वक्त समझ आती है कि मेरा तो कुछ भी नहीं था, है ना, मेरा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि खाली हाथ जा रहे होते हैं उस वक्त। आप तो कहते थे मेरा घर, मेरा फना, मेरी ये, मेरी वो कहां सब चला गया। अब पता चला मैं तो किसी चीज की भी मालिक नहीं थी। तो वो है जिसके हर चीज है। अब आप देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, पूछो इनसे जमीन किसकी है, फिर अल्लाह ताला ने खुद ही जवाब दिया कि ये कहेंगे अल्लाह की, फिर फरमाया इनसे पूछो आसमान किसका है, तो ये कहेंगे अल्लाह का। अल्लाह ताला ने फरमाया अफला तज़क्करून, फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते, फिर अल्लाह का जिक्र नहीं करते, फिर तुम शर्माते नहीं हो कि उसी की जमीन पे रहते हुए तुम उसकी नाफरमानी करते हो। हर चीज उसकी है, जो भी आप इस वक्त जो कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आपकी आंखें हैं, चाहे वो चीज आपके जिस्म की ही हो, चाहे आपकी आंखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये दरो दीवार हैं, ये दरख्त हैं, जमीन है, उसका जर्रा जर्रा है, आसमान है, उसके सितारे हैं, दरख्त, शजर, हज, हर चीज उसकी है। जब हर चीज उसकी है, तुम उसकी जमीन पे रहते हो और फिर क्वेश्चन करते हो उसी को, क्यों करूं, हम आजाद हैं, हम तो ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। आप मुझे बताएं, आपके घर में कोई आके आपकी इजाजत के बगैर अगर कुछ करता है तो आप क्या करेंगे। आपका घर है, आपकी मिल्कियत है, आप आके अपनी मर्जियां चलाना शुरू करता है, आप उसको इजाजत देंगी, आप उसके साथ हशर क्या करेंगी, पहले ये देखें। और आप अल्लाह की जमीन जो उसकी मिल्कियत है और इसकी हर चीज उसकी मिल्कियत है उसको इस्तेमाल करके फिर सुभान अल्लाह उससे हया नहीं करते, उसी की मुखालफत में चलते हैं, उसी की नाफरमानियां करते हैं, उसी के अगेंस्ट होके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये तो उसकी रहमत है कि वो पकड़ता नहीं है, वरना हम जिस तरह से उसके घर में रहते हुए यानी उसकी जमीन पे रहते हुए हम जो कुछ कर रहे हैं तो उसके अजाब के दरवाजे तो कब के खुल जाते। तो हम जुबान से कहते हैं जब पूछा जाता है किसकी है जमीन किसका आसमान, जुबान से कहते हैं अल्लाह का, मगर यकीन दिल में नहीं है। फिर देखें सुभान अल्लाह वो कितनी बड़ी जात है। हम हमारे पास हमारे सामने कोई फ्लैग वाली गाड़ी में आ जाए ना हम उसी से इंप्रेस होते हैं, ओ अल्लाह इतनी बड़ी गाड़ी, फलाने का तो मेंशन है वहां पे, फलाने के तो इतने इतने फार्म्स हैं, इतनी जायदादें हैं, इतनी जागीरें हैं, फलां तो इतना बड़ा पता नहीं क्या चीज है। अच्छा उनसे इंप्रेस हो जाते हैं तो क्या एक शहर का भी कोई मालिक नहीं है, एक मुल्क का भी कोई मालिक नहीं है। इस वक्त मुझे बताएं कौन सा मुल्क किसकी मिल्कियत है, मुल्क नहीं है तो पूरी जमीन कहां से होगी, और वो इस सब चीज का मालिक है। फिर भी देखो जरा कि हम कैसे लोग हैं कि हम एक इंसान से इंप्रेस हो जाते हैं जिसके पास चार चीजें हम देख लेते हैं, कुछ किसी औरत को जेवर में फंदे लदे फंदे देख लेंगे उससे इंप्रेस हो जाएंगे ना, चार महंगी चीजें उसके पास देख लेंगे तो एकदम हमारी नजरें ऐसे हो जाएंगी। और वो जो सब चीजों का मालिक, हमारे दिल में उसकी अजमत नहीं आती। फिर एक पुलिस वाला है ना वो कहीं उसकी गाड़ी देख लेंगे उसी वक्त पसीने छूट जाएंगे अगर उसने पीछे हमारे अपनी गाड़ी लगा ली। जो हमारे जैसे इंसान है जिनके पास थोड़ा सा वक्ती सा एक थोड़ी देर के लिए अल्लाह ने उनको कोई अथॉरिटी दे दिया उनसे इतना डरते हैं हाथ कांपने लगते हैं, हालांकि ना वो किसी की मौत के मालिक ना जिंदगी के, ना किसी को कुछ बना सकते ना बिगाड़ सकते ना इज्जत दे सकते ना जिल्लत दे सकते, फिर भी उनसे हम कितना रोब खाते हैं कितना डरते हैं। और जुबान से कहते हैं लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जुबान से कहते हैं लेकिन कायनात के बादशाह से डरते नहीं। हाँ अपने जैसे इंसानों से डर रहे हैं और वो जो सब चीजों का मालिक है उसकी बादशाही को मान के फिर उसको ललकारने लगते हैं। उसकी बादशाही को मान के हमारे दिल उससे नहीं कांपते, उसकी बादशाही को मान के फिर भी हम उसकी फरमाबरदारी नहीं करते। देखो कैसी बेअकली है ना हमारी कि ऐसे रब को छोड़ के हम वो जो फानी है जो पेशाब खाने वाला है उसे कांप कांप जाते हैं, इसलिए कि हमने अल्लाह को पहचाना नहीं ना, हमने नहीं पहचाना अल्लाह ताला को। हमारा कदर अल्लाह का कदर ही, हमने उसकी कदर ही नहीं पहचानी। उसको हम कहते तो हैं सब कुछ का मालिक है मगर इसका यकीन लाने के लिए ना इस पे गौर करना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा ये यकीन लाने के लिए, इस बात को सीखना पड़ेगा कि लहू माफ समावाती वल अर्द। और फिर देखें जो मालिक होता है उसका इख्तियार होता है वो जो चाहे करे, देखिए अब मैं अपने घर की मालिक हूं तो मैं जो अपने घर में जो मर्जी करूं, इसी तरह अल्लाह मालिक है। हम ये बात क्यों भूल जाते हैं, वो जो चाहे करे जो चाहे करे, या फालू मा युरीद, हम कौन होते क्वेश्चन करने वाले क्यों उसने ये हुक्म दिया क्यों उसने ऐसा किया क्यों उसने ये कहा। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द कुल्लुन लहू कानितून, वो जो कुछ भी आसमान और जमीन में उसका ही है, सब उसके फर्मा बरदार है, सब उसके आगे झुके में, तुम क्यों नहीं झुकते। हाँ इंसान क्यों नहीं झुकता अल्लाह के आगे, हर चीज झुकी हुई अल्लाह ताला के आगे। हमने देखे 10 साल 12 साल आपने भी पढ़ा स्कूलों में कॉलेजों में, इतना लंबा अरसा पढ़ने के बावजूद जिसको जानना था ना उसको ही नहीं जानना, जिसको पहचानने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी उसकी मेहनत नहीं की। सबसे ज्यादा जो इस काबिल है कि उसको जाना जाए जो हमारा मालिक है, हम भी तो इसी जमीन आसमान में हम भी तो हैं ना कहीं, तो हम भी उसी के हैं। उस रब को ही नहीं पहचानना, ढूंढो इस कायनात में कोई इस जैसा मिलेगा, कोई और है जिसमें ऐसी सिफात है, कोई दावा कर सकता है कि हां मैं भी ऐसा ही हूं? नहीं। फिर हम उसको छोड़ के कहां कहां भटकते हैं, इंसान किधर किधर भटकता है। अगर इसको देखा जाए ना एक बारीकियों के अंदर, इंसान एक एक चीज बैठ के देखे, ये भी इसका भी मालिक अल्लाह है, इसका भी मालिक अल्लाह है, इसका भी मालिक अल्लाह, तो इंसान दंग रह जाता है। हर चीज उसी की मिल्कियत है, हम किधर भटक रहे हैं? फिर इस जमीन पे हुकूमत उसकी, ताकत उसकी, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे वापस ले ले, कौन क्वेश्चन कर सकता है? जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे इज्जत दे दे, कोई उससे पूछ नहीं सकता। हमारी बस जहालत है कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद, इतनी जिंदगी गुजारने के बावजूद, हम अल्लाह ताला को ना इंटरेस्ट है, ना कभी ये सोचा है कि कभी मैं ये भी जानूं कि मेरा मालिक कौन है, मेरा मालिक कैसा है, मेरे मालिक की सिफात क्या है, ना कोई इंटरेस्ट है, ना कभी इसकी कोशिश की है कि आगे बढ़ के कभी ये मैं सीख लूं, कभी ये समझ लूं। और देख लें कि वो रब ऐसा है, अगर हम गौर करें ना इन सारी बातों पे, वो कभी हमें भूलता नहीं है। हालांकि उसकी लहू माफ समावती वाला, जब किसी के पास बहुत कुछ होता है ना, तो एक जर्रा जो हो उसकी किसको परवाह होती है? मिसाल के तौर पे किसी की बहुत बहुत जमीनें, जायदादें, जागीरें होंगी, तो वहां पे किसी एक जमीन पे, किसी एक उसके जगह पे, किसी एक फार्म पे एक कुत्ता है, उसको क्या जरूरत है कि वो उसकी कभी सोचे या उसके बारे में कभी कोई कंसर्न हो? अल्लाह ताला लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द है कि हर चीज जो आसमानों और जमीनों में है उसकी है, फिर भी वो हमें कभी नहीं भूलता। हम हैं जो उसको भूले रहते हैं। वो हमें फरमाता है वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, जब भूल जाओ तो अल्लाह को याद कर लिया करो। अपने बारे में वो कहता है ला ताख़ुज़ुहू सिनतुन व ला नौम, उसको तो कभी नींद और ऊंघ आती नहीं है, वो कभी नहीं भूलता। इतनी उसकी मखलूक होने के बावजूद वो और सितारों सयारों को देखे, हम क्या चीज हैं? जब साइंसदानों ने आज कह दिया कि ये जमीन जो है ये ऐसे है जैसे समंदर के किनारे पे रेत, कितनी रेत होती है ना, वो जो सैंड में एक सैंड ग्रेन होता है ना, एक रेत का जर्रा, इस तरह हमारी जमीन इस कायनात में है। वो सोचें इस जर्रे को कभी उठा के देखिएगा, जब आप समंदर के किनारे जाएं तो उठा के देखना, हाथ पे रखना और सोचना कि ये जमीन की हालत है, तो इसके ऊपर रहने वाले एक अदना से बंदे की क्या हालत होगी, क्या उसका मकाम है, और क्या उसका मर्तबा, और क्या उसका तकब्बुर, और क्या उसकी अना, और क्या उसकी बड़ाई, क्या चीज है वो? और स्टिल अल्लाह ताला उसकी हर जरूरत पूरी करता है, उसकी हर दुआ को सुनता है, उसके दिल में आने वाले हर ख्याल का वो इल्म रखता है।